नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बीच उसने देश की बिजली और ऊर्जा जरूरतों की चरम मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग के दौरान विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव पीयूष सिंह ने कहा कि सभी ताप विद्युत संयंत्र पर्याप्त कोयले के भंडार के साथ पूरी क्षमता से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अगले महीने 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में घरेलू एलपीजी और ईंधन की आपूर्ति स्थिर है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने 14 मार्च से अब तक 1,06,000 टन व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति की जा चुकी है।
14 मार्च से लगभग 1,06,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। प्रति रोज लगभग 6,000-6,500 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हो रही है। हर रोज लगभग 1,00,000 के आसपास 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हो रही है। कल लगभग 1,10,000 सिलेंडर्स की सेल हुई।
राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यसभा के नए मनोनीत सदस्य हरिवंश को शपथ दिलाई। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश को भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने पर बधाई दी। जनगणना 2027 के पहले चरण में अब तक 5,72,000 से अधिक परिवारों को स्वगणना सुविधा का लाभ मिला है। भारत के महापंजीयक ने कहा कि यह जनगणना के लिए डिजिटल पहल में बढ़ती जनभागीदारी को दर्शाता है। जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल को शुरू हुआ था। स्वगणना सुविधा 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जातिगत जनगणना पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने याचिका खारिज की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। न्यायमूर्ति वर्मा के आवास से जले हुए नोटों के ढेर मिलने के बाद उनके खिलाफ महाअभियोग की कार्रवाई चल रही थी। पिछले वर्ष 14 मार्च को नई दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास से जले हुए नोटों का ढेर मिलने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी है। इस चरण में 142 सीटों के लिए मतदान होगा। 13 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा क्षमता में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज करने की भारत की उपलब्धि पर लेख साझा किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकाशवाणी समाचार की खबर को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हासिल महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बल दिया। इससे पहले केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की थी कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 45 गीगावाट की सबसे अधिक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया सहित विभिन्न घटनाक्रमों पर चर्चा की। भारत और अमेरिका पैक्स सिलिका के अंतर्गत सहयोग को बढ़ाने और एआई तथा महत्वपूर्ण खनिजों सहित व्यापक आर्थिक और तकनीकी समझौते को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश अवर सचिव जैकब एस हेलबर्ग के बीच हुई चर्चा में इन विषयों पर विचार विमर्श हुआ। आयुषेटी बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आयुषेटी ने आज क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को 23-21-21-17 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से गुवाहाटी में खेला जाएगा। राजस्थान की टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर है, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।